बोले कथा कथा तो सुनता हूँ। बोले कथा सुनते हो तुम पंडितों की सुनते हो कथाकारों की सुनते हो, किसी संत का सत्संग सुनो तब शांति मिलेगी। जो ईश्वर को छू कर वाणी आती उस महापुरुष के पास पहुंचो। बोले काशी में इस समय पंडित ब्राह्मण साधु एकधारी सब तो बहुत है, बोले सब अपनी अपनी जगह पर ठीक है अच्छा है, लेकिन महाराज अगर मुझसे पूछते तो इस समय रहीदास पहुंचे हुए महापुरुष है। अरे कौन रहीदास? वो चमार? बोले हाँ, बाहर से तो उनका व्यवसाय मोची का है लेकिन अंदर से उनकी ज्योत जगी है। वो अगर आप पर कृपा कर दें तो महाराज आपके दसों उंगलियां घी में है, लेकिन रहीदास के पास मैं कैसे जा सकता हूं? मैं काशी का राजा और वो मेरे नगर में रहने वाला जूते सिलने वाला मोची? बोले महाराज साधु की जाति न पूछिए, महाराज साधु का व्यवसाय और बाहर का काम न देखिए, साधु की अंदर की ऊंचाई को महाराज मैं छू कर आया हूं, उनके दीदार करके आया हूं। मंत्री ने बताया राजा को, भरोसा हुआ और कथा वार्ता सुनता भी था। जया हुआ दिया जब तक नहीं मिलता तब तक हजार हजार दिए लेकर घूमते रहो, काम नहीं होता। लेकिन उस रहीदास के पास में जाऊं कैसे, लोग क्या बोलेंगे? और उस जमाने में नाथ जात का बड़ा बोलबाला था, कि ये फलाने से बात कर लिया, इसने मोची से बात कर लिया, लोग खुरदुब कर देते, टीका हो जाती, चर्चा का विषय बन जाएगा राज में। मंत्री ने कहा फिर भी आपको उस महापुरुष के पास जाना चाहिए। रहीदास के पास मीरा गई थी और मीरा पर वे बड़े थे और मीरा के चरणों में भारत का सम्राट अकबर जाकर शांति पाने के लिए सिजदा करता है। मीरा ने मेवार को पावन कर दिया रहीदास की कृपा प्रसादी को विकसित करके। मीराणी नगर सा दिलबर दरवेशन मुखे निहाल करे छो, तो वे महापुरुष हैं। काशी नरेश ने कहा अच्छा मैं मौका ढूंढूंगा, जाऊंगा तो जरूर लेकिन ऐसे ढंग से जाऊंगा किसी को खबर ना पड़े। दशहरे का दिन था, लोग रावण देखने गए और राजा ने देख बदला, अपना सेठ का कोट पहना, भाई तो उख्यानी थी करे, लंबा एक कोट पहन लिया और पगड़ी बगड़ी धारण कर ली, राजा वेश छोड़कर एक सेठ का वेश पहन के रहीदास के पास पहुंचा। रहीदास जुटे सिरे थे, जुटे सीते समय उस चमड़े को भिगाना पड़ता है थोड़ा, तो चमड़ा भिगाने के लिए पानी चाहिए, पानी लकड़ी के बर्तन में रखते थे, उसको कठौती बोलते हैं, तो कठौती में थोड़ा पानी रंगीन हो जाता है चमड़ा डालने से, पानी पड़ा था और वो अपने काम में लगे थे। राजा ने कहा कि मैं काशी नरेश हूँ, देख बदल के आया हूँ आपके यहाँ, मेरे को पता चला है आप कृपा करते हैं, मुझे शांति का प्रसाद दीजिए। रहीदास ने देखा आया है लेकिन राजा बन कर आया, राजा बन के भी ईमानदारी से नहीं आया, बेईमानी से सेठ का कोट पहन के आया, इसका थोड़ा अहम भी तो पिघलना चाहिए। रहीदास ने एक युक्ति किया, अगर इसमें अधिकारी है और योग्यता है कुछ मिटने की तो कुछ पा लेगा, कठोती में से आधी कटोरी छोटी सी आधी कटोरी पानी भर के रविदास ने उनको कहा लो ये पी लो मिल जाएगी शांति। एक तो राजा बड़ा मुश्किल से तो आप आया है और प्रसाद में से चमड़े का पानी, अरे अच्छी लेकिन हम नहीं पीते तो अपमान होता है देने वाले का, और पीते तो क्या आती क्या करें। राजा था, राजकारणी आदमी किस समय क्या करना उसको सूझबूझ तो होती है थोड़ी बहुत। तो उसने क्या करा महाराज, रहीदास को बुरा भी न लगे और पानी पिए भी नहीं, इसलिए युक्ति से उन्होंने मुंह घुमा लिया कटोरी लेके और पीने की अदा करके अपना कोट का मुंह खोल के अपने कमीज में ढाल दिया ताकि बाहर भूले भी नहीं और महाराज को बुरा भी ना। अच्छा महाराज आते गए और वो अपना कमीज अपने खास धोबी को बुलाकर बोला चुपचाप इस कमीज को धुआ देना। बोले क्या हुआ? बोले मत पूछो, जल्दी से इसको धोना के ठीक करा देना, ले जाओ घर। धोबी ने अपनी बेटी सुजनू को खमीस दे दी राजा की, रंगीन राजा साहब की खमीस मेरे धो रही, क्या है रंगी है वो, उसका स्पर्श हुआ, स्पर्श होते होते उसको ऐसा कुछ रंग लगा जो जो खमीस का बाहर दाग ढूंढता गया तो रहीदास की कृपा वाला जो पानी था उसको छोरी को छू गया, तो छोरी के चित्त में वो ज्योत जगी जयराम जी की, वो प्रेम रस उभरा, वो आनंद और वो मस्ती उभरी। प्रेम न खेत उपजे प्रेम न हाथ बिकाए, राजा चहो प्रजा चहो शीस दिए ले जाए। और शांति वो प्रेमा भक्ति का प्रसाद दिया था रहीदास ने, लेकिन राजा को अपना राजा बने का हम था, लेकिन ये बच्ची तो निर्दोष स्वभाव की थी। महाराज धीरे धीरे वो बैठे तो उसको कभी कभी ऐसे ही अंदर से आनंद आने लगे, कभी हंसी आने लगे, कभी मृत्यु उभर आए, कभी आंसू चल पड़े, क्या पता क्या हुआ है। वह जादू हुई मुझे जिए में जो भी खबर कान में, ऐसे करते करते उस लड़की की सुषुप्त चेतना जग गई, वो कुंडली शक्ति जग गई, उसको आनंद और निष्कामता की योग्यता विकसित हुई। धीरे धीरे वो बच्ची जब बोले तो लोग प्रभावित होने लगे, जैसे संत कंवर राम कुहर बेचते थे और संतों ने दृष्टिपात से ज्योत जगा दी और कोहर का आवाज इतना मीठा कि कोहर न दे तो न दे, केवल कोहर का जरा होका दे तो होको तो नहीं बुझा लाल है, कोहर न थे तो कई गाल का नहीं ठटको पैसे पैसे जा कोहर पाइए जा आ भेले जा पैसे जा टक्के जा कोहर का हदत ही पेट भरे खाए हेवट ठटको कोहर ने होको तो नहीं बुझाए। आए कोरन वारे चना धर्म अथई नरम, ऐसा स्वाभाविक बोलते कि लोग उसका आवाज सुनते। धीरे धीरे वही लड़का जब थोड़ा छोटा मोटा टूटा मोटा भजन गाता था तो लोग रुपए उस पर कुर्बान करने लगे और होते होते आज विश्व विख्यात हो गए संत कंवर राम। तीर्थबाई सेवा करती थी और सतराम दास की निगाह बरस पड़ी के माई बिचारी निर्दोष भाव से सेवा करती, वर्षों से सत्संगी आ रहे, संतों की सेवा नहीं मिलती तो संत के दर्शन करने आ रहे, उस समय तो आधा संत तो वो भी है, उनकी सेवा कर लो। जे को जन्म मरण ते डरे साध जिना की शरणी पड़े, जे को अपना दुख मिटावे साध जिना की सेवा पावे। लेकिन साधु सेवा नहीं करने देते तो साधु के दर्शन करने वालों की सेवा कर देती थी तीर्थ माई, पानी पिलाती थी। और साईं सतराम दास का हृदय बरस पड़ा, वर्षों से तू पानी पिलाने की सेवा करती, बेटी क्या चाहिए बोलो। बोले साईं कुछ न ताजी कृपा, बस संत जी मेरे खड़िया मुखे है दे मुखे है दे, मंग तो न थी जे थी दे ये बस आवाज ताजी दया बस। बोले अच्छा ठीक है रख भगवान थे। उसी तीर्थ भाई को बालक हुआ कंवर राम और माँ ने सिखा दिया कोहर बेचने को देती थी तो कोहर के साधु संत के दे न तो उन्हें का पैसा न बैठ जा सेवा कर जा संत जी सेवा कर जा। मिल गया कोई संत और कोहर लिए, बोले पैसा नहीं मेरी माँ ने मना किया सेवा, अच्छा बाहर का धन नहीं चाहिए तो हम तुझे अंदर का धन देते हैं, बैठ। बिठाया श्वासों श्वास को गिनो, श्वास अंदर जाए शांति, बाहर आए राम, अंदर जाए शांति, बाहर आए एक। प्रयोग कराया, प्रयोग कराते कराते कुछ निमित्त करना पड़ता है। संतों ने निगाहों से संकल्प बरसा दिया, वही कंवर राम की चेतना जगी। कोहर बेचने वाला दो दो पैसे का, एक एक पाई का, अधले का और पैसे का कोहर बेचने वाला व्यक्ति महान संत हो पूजा जा रहा। अगर है शौक मिलने का तो कर खिजमत फकीरों की, ये जौहर नहीं मिलता अमीरों के खजाने में। अमीरों के खजाने में ये जौहर नहीं मिलते। सजलू का वह प्रकाश धीरे धीरे, दो आदमी, पांच आदमी, पंद्रह आदमी, पच्चीस आदमी, पचास आदमी सजलू का दर्शन और सत्संग करने लगे। ऐसे करते करते मंत्री तक सुजलू की प्रशंसा पहुंची और पुण्य आत्मा मंत्री सुजलू का दर्शन और सत्संग लाभ करने गया। वो मंत्री रंगा हुआ था, कुछ समझदार था, सुजलू के वचन सुना तो मंत्री दीवाना हो गया। राजा को कहा कि तुम रहीदास से तो लाभ नहीं ले पाए, चलो वो तो मोची थे, मार थे, लेकिन ये तो आपके घर के जो धोबी है उसकी सुपुत्र है सुजलू, अब अपने घर के धोबी के पास जाने में क्या बड़ी बात है, राजन आप उनसे फायदा उठाइए। राजा गए उस सुजलू लड़की के पास, जिसकी ज्योत जगी होती है, जिसको परमात्मा की स्मृति तत्व का साक्षात्कार होता है, वे महापुरुष जो टोपी टोपा पहनते उस टोपी टोपा में भी वाइब्रेशन होते, वो जो वस्त्र पहनते उन वस्त्र में भी प्रभाव होता है, वो जो वस्तु को छूते उस वस्तु में भी उनके वेव्स, उनके वाइब्रेशन होते। तो भले कठोती का पानी है लेकिन था तो रहीदास की दृष्टि वाला, उसका प्रभाव पड़ा सुजलू पर। राजा गए सुजलू के पास कि सुजलू मेरे को शांति चाहिए। सुजलू कहती कि राजन शांति मेरे पास लेने आए, मैं तो तुम्हारी खमीस देकर इतनी महान हो रही हूं, तुम मेरे पास शांति मांगने। राजा को फिर लाइट हुई कि रा मिला हुआ मौका मैंने खोया, रहीदास को मैंने नहीं पहचाना। मीरा ने रहीदास को पहचाना था, सच्ची श्रद्धा से मीरा ने सिर झुकाया था और रहीदास की कृपा को पचाया, और मीरा लाखों विघ्न और बाधाओं के बीच भी मेवाड़ में नाचती रही, मुस्कुराती रही, गुनगुनाती रही। जो सच्चा प्रेमी होता है उसे दुनिया के सुखों की चाह नहीं, सिर पर आकर विघ्न बाधाओं और मुसीबतों के पहाड़ गिरे फिर भी दिल से निकलती आह नहीं, वो भगवान के प्रेमी भक्तों का स्वभाव। संसारी आदमी को तो जरा सा सुख सुविधा मिलता तो खूब जाता है मां मां मां, और जरा सा प्रॉब्लम आता तो भाग फिटो, खंज बोतल छोरा पीऊ दुख बेचा। अब बोतल दुख मिटाएगी, घाटा पड़ गया पियो बोतल, कुछ कोई मर गया पियो बोतल, बोतल पीने से अगर मृतक आदमी फिर जिंदा हो जाए तो खूब पियो, बोतल पीने से अगर घाटा पूरा हो जाए तो खूब पियो। बोतल पीने से तो भाई ज्ञान तंतु सुन्न हो जाते हैं, आदमी की बुद्धि दब जाती है, थोड़ी देर के लिए मर जाती और फिर सुमृति हुई तो वैसे का वैसे। जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात बीती सुबह को उतर जाएगी तू, फकीरी प्यालियां पी ले तेरी सारी जिंदगी शुद्ध हो जाएगी। हरि सच्चे हृदय से उसे कह दो कि आज हम तेरी स्मृति का आरंभ करते हैं। उस माई का पति भुलक्कड़ था, उससे ज्यादा हम भुलक्कड़ हैं। वो कहता है बहन जी मैंने कहीं तुम्हें देखा है, और हम भी कहते हैं कि प्रभु जी हमने तुम्हें देखा है। सुबह तुम हमें जगाते हो, हमने तुम्हें देखा है। पक्षियों के भीतर किलोल करते हुए प्रभु हमने तुम्हें देखा है। संतों के हृदय में बैठकर कृपा बरसाते हुए प्रभु हमने तुम्हें देखा है। माता के द्वारा वात्सल्य बरसाते हुए परमेश्वर हमने तुम्हें कहीं देखा है। बीमारी हालत में रोग मिटाने की सत्ता देने वाले प्रभु हमने आपको कहीं देखा है। चारों तरफ से मुसीबतें घेर लेती और फिर एकाएक मुसीबतें हवा हो जाती है, तो मुसीबतों को हवा करने वाले प्रभु हमने तुम्हारी कृपा को कभी कभी देखा है। तुम आज से संकल्प करो कि उसकी कृपा की समीक्षा करेंगे। सुबह नींद में से जगाए तो बोल देना कि हमने तुझे देखा है, तू नहीं जगाया है। नहीं तो पत्नी क्या जगा सकती है बिचारी अबला, पति क्या बिचारा जगा सकता है। नींद में से तू ही जगाता है प्रभु, हमने तुझे देखा है। अन्न तू ही हमारा पचाता है प्रभु चैतन्य देव, हमने तुझे देखा है। भले पक्के ढंग से नहीं देखा, लेकिन संतों के द्वारा तो देखा है, शास्त्रों के द्वारा तो तुझे थोड़ा बहुत देखा है प्रभु। तू अनाथों का नाथ है, हम तुझे जानते हैं थोड़ा थोड़ा। हे परमेश्वर आंखों को सत्ता स्मृति तू देता है, हमने तुझे देखा है। फूलों में महक लाने वाले और बालकों में निर्दोष भाव से हंसी उदेलकर थकान मिटाने वाले यार, हमने तुझे बालकों में भी कभी कभी देखा है। निर्दोष भाव से समाज का मंगल करने वाले निष्काम कर्म योगी गुरुओं की निगाहों में तुझे देखा है। ब्रह्म ज्ञानियों के दिल के द्वारा तू बरसता है, वो भी हमने देखा है यार, तुझे कहीं देखा है। आज से पक्का कर लो कि दिन में कई बार उसकी स्मृति करो कि मैंने तुझे कहीं देखा है। ऋषियों के आईने में तुझे देखा है, माता के वात्सल्य में तुझे देखा है, पिता के अनुशासन में तुझे देखा है, गुरु के ज्ञान और ध्यान में तुझे देखा है, प्रभु ने तुझे देखा है। बड़ा सरल उपाय है, सच्चा उपाय है, सहज उपाय है। आपको हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं, आप प्रयोग करना, बहुत फायदा होगा, बहुत लाभ होगा। मृत्यु के समय छोरा छोरी परिवार को याद नहीं रखना, मृत्यु में भी तेरी सत्ता है, मैंने तुझे देखा है। तुम्हारी मौत भी अमरता ले आएगी, क्योंकि ईश्वर की सत्ता के बिना मौत सांस भी नहीं ले सकती। रोग के समय में रोगी हूं बीमार हूं ऐसा दुखी मत होना, रोग और बीमारी शरीर को है, उस रोग और बीमारी को मिटाने की सत्ता देने वाला तू मेरा सच्चा साथी है। रोग तो आता है जाता है, लेकिन तू तो सदा रहता, मैंने तुझे देखा है। तुम निर्दोष हो, किसी दुश्मन ने कलंक लगा दी, मीरा पर कलंक लगे, शबरी पर कलंक लगे, साईं टेऊराम के ऊपर तो इतने कलंक लगे, जितने जितने ऊंचे व्यक्ति तो इतने इतने बड़े बड़े कलंक लगते हैं। तुमको भी कभी कलंक लगे तो तुम दुखी मत होना। कलंक लगवा कर तू मेरा अहंकार मिटाना चाहता है अथवा आसक्ति मिटाना चाहता है। मैंने तेरी लीला को देखा है, तुझे देखा है। कभी मित्रों के द्वारा सराहना होती है, सफलता मिलती है, तो मित्रों के अंदर भी तू परम मित्र उनको प्रेरणा करता है। मैं देखा है तुझे। मित्र अगर मोहब्बत करे तो मित्र में आसक्ति मत करना, नहीं तो वही मित्र शत्रु हो जाएगा। मित्रों में से ही शत्रु बनते हैं। ऐसी बात कभी मित्र को मत कहो जो आप शत्रु को नहीं कहना चाहते, क्योंकि मित्र कभी शत्रु हो सकता है। ऐसी बात शत्रु को कभी मत कहो जो आप मित्र को नहीं कहना चाहते, क्योंकि शत्रु जब मित्र बनेगा तो पहली हुई कटु बात आपको खुचेगी। बस सच्चे मित्र को कहो कि मैंने तुझे देखा है मेरी लड़ाई करते हुए। मित्र देकर तू मेरा विषाद मिटाता और शत्रु देकर तू मेरी आसक्ति मिटाता है। मैंने तुझे देखा है। आप स्मृति करने की कला पा लीजिए। जब दुख आए तो कह देना कि दुख भेजकर तू मेरी आसक्ति मिटाता है, मैंने तुझे देखा है। आपका दुख बंदगी बन जाएगा। अगर सुख आ जाए तो उसमें आप लंपट मत होना, सुख का सदुपयोग करना, उसको बांटना और कहना कि सुख देकर तू मेरी विषाद को मिटाता है, उत्साह बढ़ाता है, मैंने तुझे देखा है। यार मैंने तुझे कहीं देखा है। बार बार उसकी कृपा की समीक्षा करो, प्रतीक्षा मत करो। किसी सिद्ध पुरुष महापुरुष के पास एक भगत पहुंचा, जवान लड़का था। अपने यौवन को, अपनी तंदुरुस्ती को, अपनी संपत्ति को सतमार्ग में लगाता था। बैठा गुरु जी, जब तक भगवान का दर्शन नहीं कराओगे तब तक नहीं उठूंगा। पलथी मार के बैठ गया। गुरु जी तो चले गए अपनी कुटिया में, वो दरवाजे पे धरना मार के बैठ गया। एक दिन हुआ, दूसरे दिन की सुबह हुई, गुरु बाहर आए कुटिया से, राउंड पर निकले थे। उठाया डंडा, अंदर तो करुणा भरी थी और बाहर थोड़ा अनुशासन। क्या चाहता है रे, कल से बैठा है। बोले, गुरुजी आप चाहो तो मुझे भगवान के दीदार करा सकते, मैं और कुछ नहीं मांगता हूं, आपकी रहमत, बस मेरी जोत से जोत जग जाए, उसके दीदार करा दो। गुरु ने सोचा कि भगवान के विग्रह के दीदार कराऊं, इससे तो सब में भगवान है, ऐसा उसको असली आत्मज्ञान दे दूं तो ठीक। गुरु ने पकड़े काला, बेवकूफ कहेगा, हर जगह दिख रहा है और अभी तक दीदार नहीं किया तूने। फूलों में महक क्या तेरे बाप की है? पक्षियों में किलोल वो कर रहा है, नहीं कर रहा है? सूरज में चमक वही तो दे रहा है, और ग्रहों के द्वारा वही तो देख रहा है। फिर तेरे को नई आकृति देखना है? जब इतनी आकृतियों में दिख रहा है तो तू स्वीकार क्यों नहीं करता है, मूर्ख कहेगा। जब इतने रूपों में दिख रहा है तो फिर एक नए रूप की तू भावना क्यों करता है? इतने रूपों में दिख रहा है, इतने रंगों में दिख रहा है, इतने ढंगों में दिख रहा है, ये तू अपनी ज्ञान की जोत क्यों नहीं जलाता है बेटा? शिष्य का हृदय पानी पानी हो गया। बाहर से तो वज्र से भी कठोर है और भीतर तो उम्र से भी कोमल है। गुरु ने दो वचन कहे और शिष्य की ना समझी हती। कहता है, राजकुमार, हाँ मैंने देखा है। बोले कहाँ है तेरा बाप? बोले यही है। बोले तो मैं हूँ? बोले नहीं, आप और वो दो नहीं। तो बोले मैं और वो दो नहीं तो तू और वो भी दो नहीं, मैं तत्व मसीह है। सत्पात्र मिले देने वाले को रहमत आ जाए तो महाराज निहाल कर देता है। शिष्य सत्पात्र हो और गुण समर्थ हो, जो बरसता है मैंने देखा है, जो मिलता है मैंने देखा है, जो पाया जाता है मैंने देखा है, तभी आपको कहता हूं कि आप भी ऐसा पा लीजिए, आप भी ऐसी स्मृति कीजिए। उसे प्यार करो ना, ये प्रेम भक्ति का राज के बिना तपस्या, प्रेम के बिना धन रूखा, प्रेम के बिना तन रूखा, प्रेम के बिना जीवन रूखा। प्रेम जब बॉडी में फंसता है तो सेक्स होता है, प्रेम जब धन में मुंडारता है तो लोभ होता है, प्रेम जब परिवार में उलझता है तो मोह बनता है, और प्रेम जब पिया में लगता है तो परमात्मा का रस आता है। मैंने तुझे कहीं देखा है, उसे प्यार करते जाओ ना, प्रभु तेरी जय हो। तू मीरा का कन्हैया हुआ था, शबरी का राम, भक्तों का भगवान, सिंधी साईं का झूलेलाल, मोहम्मद का तू अल्लाह और कबीर का तू अव्यक्त, नानक का तू ही अकाल था। मैंने तुझे देखा है, रहीदास का तू रब था, तू मीरा का कन्हैया भी हो सकता है। पिता माता में बनता और मां भतीजा नहीं बनती, और भतीजा मामा नहीं बनता, और मामा भांजा नहीं बनता, लेकिन तू भांजा भी बनता है, मैंने देखा है तुझे, और मामा भी तू ही बनता है, मैंने तुझे देखा है, बाप भी तू ही बनता है, मैंने तुझे देखा है, और मां भी तू ही बनता है, मैंने तुझे देखा है। यार भी तू ही बनता है, मैंने तुझे देखा है। दिलदार की धड़कनों में भी तू धड़कता है, मैंने तुझे देखा है। इस प्रकार की स्मृति, भगवान कहते हैं अगर तुमने कर ली, गीता के 10वें अध्याय का 8वां श्लोक है, मैं संसार मात्र का प्रभाव मतलब मूल कारण हूं, पति पत्नी परिवार सब सब चीजों का मूल कारण मैं हूं, ऐसा जो जानते हैं मानते हैं। और मुझसे ही संसार प्रवृत्त हो रहा है, ऐसा जो मानते हैं और जानते हैं, ऐसा मेरे को मानकर मुझ में ही श्रद्धा प्रेम रखते हुए बुद्धिमान मेरा ही सुमरण चिंतन करते हैं, जो सब प्रकार से मेरे में ही है, जो मेरे हो जाते मैं उनका हो जाता हूं। अहम सर्वस्य प्रभवो हो, गीता के 10वें अध्याय का 8वां श्लोक है, उसी के अनुसार ये आप स्मृति करो। भगवान ही सबकी उत्पत्ति का कारण है, भगवान ही सबकी स्थिति का कारण है, भगवान ही सबके रूपों में, सब रूपों में भगवान ही खेल रहे, ऐसा जो करता है श्रद्धा से, वो भगवान से अलग नहीं और भगवान उससे अलग नहीं। भले तपस्वी तप करे 15 साल 25 साल, उसे मुबारक हो, नेता कुर्सी को चिपक रहे हमारा इनकार नहीं, लेकिन तुम तो उसकी स्मृति को चिमको, हजारों नेता तुम्हारे चरणों पे मत्था टेक कर अपना भाग्य मना लेंगे। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्था सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम्, इति मत्वा भजन्ते माम् बुद्धा भावं समाहिताः। मैं संसार मात्र का प्रभाव मूल कारण हूँ और मुझसे ही सारा संसार प्रवृत्त हो रहा है, ऐसा मेरे को मानकर मुझ में ही श्रद्धा प्रेम करते हुए बुद्धिमान मेरा ही भजन करते हैं, सब प्रकार से मेरे ही शरण होते हैं।